आप सुनना शुरू कर चुके हैं खबरों से भरा न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। स्वीकार करें अनुराग अन्वेषी का नमस्कार। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। आज के पॉडकास्ट में बताएंगे कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब किन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही केंद्र ने 6 राज्यों के संक्रमण के हालात को लेकर चिंता भी जताई है। हम आपको यह भी बताएंगे कि वे 6 राज्य कौन कौन से हैं। इस बीच मुंबई के सभी स्कूलों में 24 जनवरी से 1 से 12वीं कक्षा तक ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। आज के पॉडकास्ट में चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी अपडेट हैं। साथ ही मौसम का मिजाज तो है ही। पॉडकास्ट के अंत में आपको बताएंगे 99 लाख रुपए की कहानी जिसे कोई नहीं बताना चाह रहा अपना। फिलहाल आज की पहली खबर। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि 18 साल से कम आयु के मरीजों के लिए एंटीवायरल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है। केंद्र ने कहा कि कोविड संक्रमण की गंभीरता के बावजूद यदि स्टेरॉयड का उपयोग किया जाता है तो उन्हें 10 से 14 दिनों में कम किया जाना चाहिए। बच्चों और 18 साल से कम आयु के किशोरों में कोविड 19 के प्रबंधन के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क लगाने का सुझाव नहीं दिया जाता है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 6 से 11 साल के बच्चे अपनी क्षमता के आधार पर अपनी सुरक्षा और अभिभावकों की उचित देखरेख में सही तरह से मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि 12 साल और उससे ज़्यादा के बच्चों को बड़ों की तरह मास्क पहनने के नियमों का पालन करना चाहिए। ओमिक्रॉन के चलते आई कोविड मामलों की नई लहर के मद्देनज़र केंद्र के एक्सपर्ट्स ने इन दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि ओमिक्रॉन वेरियंट देश के लगभग सभी हिस्सों में फैल चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि टीकाकरण दर के चलते अस्पताल में भर्ती होने और मौत की संख्या काफ़ी कम रही। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि देश भर में 515 जिले ऐसे हैं जहां बीते हफ्ते पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा रहा। भारत के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, महामारी के हालात बताते हैं कि तीसरी उछाल में संक्रमण देश के लगभग सभी हिस्सों में फैल गया है। यह भी साफ है कि मौत कम हुई है, टीकाकरण ने कवच के तौर पर काम किया है, मृत्यु दर काफ़ी कम है, हालांकि पॉजिटिविटी रेट 16% से ज़्यादा है। गोवा में पॉजिटिविटी रेट 50% है। वायरस तेजी से फैल रहा है, टीकाकरण और मास्क का पालन करना ही होगा, हम सावधानी को कम नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। मुंबई के सभी स्कूलों में 24 जनवरी से 1 से 12वीं कक्षा तक ऑफलाइन पढ़ाई फिर शुरू हो जाएगी। नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह फैसला ऐसे समय में किया गया है जब ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना वायरस के दैनिक नए मामलों में कमी शुरू हो गई है। चहल ने कहा कि प्री प्राइमरी स्कूलों में भी ऑफलाइन कक्षाएँ फिर से शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि मुंबई के सभी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने 24 जनवरी से ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए 1 से 9वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ओमिक्रॉन और कुल मामलों के बढ़ने पर बृहन मुंबई नगर निगम ने 3 जनवरी से स्कूल बंद कर दिए थे। ICC ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टीम इंडिया टूर्नामेंट में अपना पहला मैच पाकिस्तान से खेलेगी। यह मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले 7 अलग अलग शहरों एडिलेड, ब्रिस्बेन, जिलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में होंगे। 2014 का चैंपियन श्रीलंका 16 अक्टूबर को टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। भारत को सुपर 12 में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और दो क्वालिफायर के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। भारत पूरे टूर्नामेंट में कुल 5 मैच खेलेगा। पहला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा 27 अक्टूबर को ग्रुप ए की रनर अप के साथ, तीसरा 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, टीम इंडिया का चौथा मैच 2 नवंबर को बांग्लादेश और 5 नवंबर को ग्रुप बी की विनर के साथ होगा। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सारी पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों की घोषणाएं जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक रूप से अब यह तय हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। यह पहली बार होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ सीट से मौजूदा सांसद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए MLC थे। इससे पहले उनके आजमगढ़ की गोपालपुर और फिर संभल के गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा थी। गौरतलब है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। इसके साथ ही दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ेंगे। यह 30 साल बाद पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 70 में से 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। BJP ने अपने 10 सेटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक BJP ने 5 सीटों पर महिला, 15 सीटों पर ब्राह्मण और 3 सीटों पर वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को टिकट दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि टिकट की उम्मीद में विधायकी छोड़कर कांग्रेस से BJP में आए राजकुमार का पत्ता 1 घंटा पहले ही साफ हो गया। दूसरी तरफ पार्टी ने 12 बजे पुरोला से कांग्रेस नेता दुर्गेश्वर लाल को BJP ज्वाइन करवाई और 2 बजे उन्हें कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। पुअर परफॉर्मेंस और एंटी इनकम्बेंसी के चलते जिन 10 विधायकों की टिकट कटे उनमें पौड़ी से मुकेश कोहली, खानपुर से कुंवर प्रवण चैंपियन, कर्णप्रयाग से सुरेंद्र सिंह नेगी, थराली से मुन्नी देवी, अल्मोड़ा से डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान, गंगोली हाट से मीना मंगोला, यमकेश्वर से पूर्व CMBC खंडोरी की बेटी रितु खंडोरी, कपकोट से बलवंत सिंह भौरियाल, द्वाराहाट से महेश नेगी और काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा के नाम हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गतिविधियों के बीच बीते 19 जनवरी को नोएडा में चेकिंग के दौरान 99 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम बरामद की गई। मज़ेदार बात यह है कि इस 99 लाख रुपये को लोग अपना बताने से इनकार कर रहे हैं। बता दें कि यह रकम फॉर्च्यूनर कार से ले जाई जा रही थी। चेकिंग के दौरान कार में जो लोग मौजूद थे उन्होंने यह रकम दिल्ली के कारोबारी की बताई थी। उन्होंने बताया था कि इसे नोएडा में हार्डवेयर कारोबारी के पास पहुंचाना है। पुलिस ने जब इस बारे में कपड़ा कारोबारी से संपर्क किया तो उसने इसे अपनी रकम मानने से इनकार कर दिया। हार्डवेयर कारोबारी का भी कहना है कि इस रकम से उसका कोई संबंध नहीं। यहाँ तक कि जिस फॉर्च्यूनर कार में रकम जा रही थी वह कार एक महिला के नाम पर दर्ज है। जब महिला से संपर्क किया गया तो उसने भी कार अपनी होने से इनकार कर दिया। नोएडा पुलिस ने अब रकम और कार को बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत थाने में जमा करवा दिया है। जनवरी का आखिरी हफ्ता आने वाला है। आमतौर पर यह समय है मौसम के ठंडे मिजाज में बदलाव का, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा, बल्कि ठंड घटने के बजाय बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर भारत और राजस्थान के कई इलाकों में 1-2 दिनों के अंदर तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही उत्तर भारत की पहाड़ों में बर्फबारी के चलते शीतलहर का एक दौर शुरू हो सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट जगहों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम में वर्षा हो सकती है। 20 और 21 तारीख को उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, लिहाजा तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। 21 और 22 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की संभावना है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।